तो भोजन करने और कराने की, इसलिए इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी को भोजन परोसो, महिलाओं से कहना है, चाहे आपके पतिदेव हो चाहे आपके बेटा बेटी हो, उनको अपने सामने बैठ करके भोजन कराओ। यदि वो टीवी के सामने या और कहीं कमरे में बैठ करके भोजन कर रहे हैं तो आप कहना नहीं, मैंने तो व्रत महाराज जी से लिया है। कौन सा व्रत? आप लोग व्रत करते ना, अभी बता दो, 16 कारण पर्व चल रहा है,
हो गया
व्हाट्सएप में आ रहा था, नहीं मेरे को, अच्छा आगे आने वाले हैं। ये 16 कारण तो एक महीने में चलते हैं, हाँ 16 कारण पर्व चल रहे हैं, अभी बताते हैं, साल में 3 बार आते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप लोग बहुत सारे व्रत लेते हैं, नियम लेते हैं, कोई महिलाएं चारु शुद्धि तक के व्रत करती है, चाय ट्रेनिंग है, फिर भी अब एक व्रत और आप ले लो, परिवार सुरक्षा व्रत, शिशु सुरक्षा, शिशु रक्षा व्रत। कौन सा शिशु रक्षा व्रत है? ये नया लॉन्च हुआ है, क्योंकि आज परिवार में जितनी विकृतियां आ रही है उसका मूल कारण ये है कि आज हमने पति और जो बच्चों को सामने बैठा के भोजन करने की परंपरा को, हम तो ये कई बार भोजन करने, हम लोग जब आहार करने चौके में जाते हैं तो इतना छोटा चौका होता है वहां खड़े होने की जगह नहीं। इसका स्पष्ट है कि आप अपने परिवारजनों को भोजन जहाँ बनता है वहां भोजन नहीं कराते, वो कहीं बाहर भोजन करते हैं। पहले हमें ध्यान है, बचपन में जब हम लोग थे तो इतना बड़ा जो चौका होता था कि जहां पे सारे परिवारजन बैठ करके भोजन कर लेते थे और भोजन कराने वाला सामने बैठ करके तो एक एक ग्रास परोसते हुए और इस प्रेम के साथ वो भोजन वहां पर होता था और सब परिवार मिल जाते थे और भोजन करने की परंपरा थी, पैर लटका करके भोजन नहीं करते थे, पालती मार करके भोजन करते थे। एक ये नियम सबका होना चाहिए, जितने इंडियन रानी यहां बैठे जो भी आज इस प्रवचन को सुन रहे हैं, कि आप पालती मार करके बैठ करके भोजन करिए। बहुत सी बीमारी की जड़ है जो पैर लटका करके डाइनिंग टेबल पर भोजन कर रहे हैं ना, ये बहुत अनेकों बीमारी की जड़ है। आप पालती मार के बैठिए और एक मोंदरा लीजिए, मोंदरा जान दे तो पहले 3 पैर वाला एक होता था, उसके ऊपर थाली रखते थे, या कम से कम थाली आपके आसन से ऊपर पाटे पर रखें, चौकी हो जाए या घर में आप लोग भाई इतनी बड़ी जब डाइनिंग टेबल बनवा सकते हैं तो इस तरह से बैठ करके जब भोजन करते हो, कराने वाला सामने जो भोजन कराता था, जब बेटा 8 रोटी खाने के बाद भी माँ कहती थी देखो आजकल कोई खा पी नहीं रहा बेटा, क्यों इतना खाने, माँ तो वो ही है जो कि कितना भी बेटा खा ले, लेकिन माँ कभी नहीं कह सकती कि बेटा आपके दिल डट के भोजन किया, माँ तो हमेशा कहेगी बेटा अभी तो तुमने कुछ खाए नहीं। ये भावनाओं का चमत्कार होता था कि माँ, अगर एक कहावत है, रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, काम करना सही चाहे देर हो, लिख लेना कहां पर दिमाग में, रास्ता चलना सही चाहे फेर हो, फेर माने राउंड लंबा हो, काम करना सही चाहे देर हो, भोजन करना मां के हाथ से चाहे जहर हो, और सलाह लेना भाई से चाहे बैर हो। ये नीति है, चार बातें आए समझ लो। ये जब हम छोटे मंदिर में कागज में लिखी हुई, जब वो देव दर्शन करने जाते थे, चार बातें लिखी थी, भोजन करना मां के हाथ से चाहे जहर हो, और सलाह लेना भाई से चाहे आपका जन्म जब उससे कितना भी बैर हो। और प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है, लेकिन ये भोजन करना मां के हाथ से, अर्थात पत्नी भी कभी भोजन नहीं करा सकती, भोजन कराते समय पत्नी भी मां के समान, मां भोजनेशो मातृवत, भोजन के समय वो पत्नी भी मां के समान हुआ करती है, और जब सामने बैठ करके आप भोजन करते हैं तो आई कॉन्टेक्ट को कहते हैं, आंखों से आंख जब बेटा पति और मत्थे के बीच में होते हैं तो आपका ही उनके प्रति आत्मीयता जागृत होती है। फिर एक बात आप बच्चे से कहो वो आपकी बात कैसे नहीं मानेगा। आपने तो बच्चों को टीवी के सामने बैठा लिया, मैं ला रही हूं क्या चाहिए आवाज दे देना, इसका ही ये परिणाम निकल रहा है। पारिवारिक प्रेम जो नष्ट हो रहा है ना, शुरुआत यही से हो गई, क्योंकि भोजन का समय एक ऐसा होता था, आप देखना दुनिया में अगर किसी को बस में करना हो तो अच्छा आप उसको खिला पिला दो। पंच कल्याण की बड़ाई प्रशंसा इसलिए नहीं हो रही कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, प्रशंसा इसलिए हो रही कि भोजनशाला बहुत अच्छा मालताल। अब बताओ जब तक पेट में अगर अच्छा माल पहुंच गया तो बाकी कार्यक्रम तो सब एक तरफ और भोजनशाला का भोजन अच्छा मिल रहा है। तो भोजन अगर आपने करा दिया तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। और हमारा यही कहना है कि पुरुषों को बच्चों को कोई हमारा नियम देने का मन नहीं है। ये महिलाएं अगर माताएं हमारी संकल्प कर ले कि जिस दिन मेरा पति या मेरे बच्चे मेरे सामने बैठ करके भोजन नहीं करेंगे उस दिन मैं उपवास करूंगी, बहुत बड़ा। और लेकिन तुम्हारा एक ही उपवास होगा, यही हमारी गारंटी लिख लो। कोई भी पोत और कोई भी बेटा बेटी इतना कठोर नहीं हो सकता कि माँ उसकी उपवासी बैठी रहे और वो खाना खा ले। पुरुषों में तो और दम नहीं है, वो तो तुम्हारे एक आंसू पे सरेंडर हो जाते हैं। की दशा बड़ी विचित्र है, पता नहीं लो परिवार में। अब इतने संकल्प करो कि आपका ये संकल्प, यदि आप बेटा कहेगा मैं नहीं खाऊंगा, मैं टीवी के सामने बैठ करके भोजन करूंगा, कोई बात नहीं, मैं तुझे परोस तो दूंगी किंतु आज मैं भोजन नहीं करूंगी, मैंने महाराज के सामने दीक्षा कल्याण के दिन संकल्प लिया है और आज आचार्य महाराज का केस लॉन्च भी हुआ है, आज समय सारा महाराज जी का दीक्षा दिवस भी है और भगवान का भी दीक्षा दिवस है, मेरे एक संकल्प ले सकते हैं। इतनी महिलाएं संकल्प लेकर के गारंटी है, एक भी उपवास नहीं होगा, ये भी गारंटी है, लेकिन शाम तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पूरा परिवार सरेंडर हो जाएगा। आपने बच्चों और पतियों को जो टीवी के सामने बैठ के भोजन कराना शुरू कर दिया, यही से तुम्हारे परिवार का पतन शुरू हो गया। एक उदाहरण आपको देते हैं, सुन रहे आप लोग ना, सर सेठ हुकुमचंद जी का एक उदाहरण है। सर सेठ हुकुमचंद जी के बताते हैं एक बार व्यापार में लगभग 20 लाख का या ऐसे 8-10 लाख का घाटा लग गया। अब जब भोजन करने बैठे तो उनको सेठानी भोजन कराने बैठ गई, बड़े ऐसी परंपरा थी, आप लोग इस परंपरा को शुरुआत कर सकते हैं। और सेठानी जब सामने बैठी तो देखा सेठ जी का चेहरा उतरा हुआ है। आप देखना आपके बेटा बेटी यदि कहीं पतन की ओर जा रहे हैं तो फेस इन द इंडेक्स ऑफ हार्ट, चेहरा हमारे हर हृदय की गतिविधि का परिचायक होता है। आज आपके बेटा बेटी कब डिप्रेशन में जा रहे हैं, कब गलत दिशा में जा रहे हैं, कब उनकी फ्रेंड सर्कल बिगड़ रही है, आपको पता इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने कभी सामने बैठा के भोजन कराया नहीं। यदि आज बच्चे के मन में कोई पाप पैदा हो रहा या कोई गलत कार्य की ओर बेटा बेटी जा रहे होंगे और आप सामने बैठ के भोजन करा रहे होंगे, तुरंत आपको पता चल जाए बेटिया आज तो कुछ न कुछ चेहरे पे तुम्हारी गड़बड़ी है, या तो कोई गलत काम तुमसे हुआ या कोई गलत काम करने तुम जा रहे हो, आप बिल्कुल पकड़ लेते हो। महिलाओं का तीसरा लिंग और ज्यादा जागरूक होता है, यदि महिलाएं जागरूक हो जाए तो समाज का परिवर्तन मात्र महिलाओं से होता, पुरुषों से कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि घर को नरक बनाती है तो एक महिला और घर को स्वर्ग बनाती है तो एक महिला, पुरुष के बस की बात नहीं है। घर को नरक और स्वर्ग बनाने में किसका हाथ है बताओ, एक संस्कारित भूम अगर घर में आ जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है और एक असंस्कारित भू अगर घर में आ जाए तो घर नरक बन जाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने प्रक्रिया स्तर जैसी संस्कार खोली बेटियों को संस्कार देने के लिए, क्योंकि आज संस्कार बेटियों का मिलना दुर्लभ हो रहा है। आज आपने शिक्षा के नाम पे जिस तरह बच्चों के सामने विपरीत वातावरण प्रस्तुत कर दिया, आज हमारे संस्कारवान परिवारों में जन्म लेने वाले बेटे बेटियों की भी दुर्दशा हो रही है। कारण उसमें बेटा बेटी जिम्मेवार नहीं है, हम नहीं ऐसा माहौल उनके सामने। वो जब सेठ जी वहां पर पहुंचे, सेठानी ने पूछा कुछ ना कुछ आज आपके मन में विकल्प है? सेठ जी कुछ नहीं, तुम तो भोजन परसो। नहीं नहीं सेठ जी बताओ, कुछ ना कुछ तो बात है। जब दो तीन बार सेठानी ने पूछे तो सेठ जी ने कह दिया आज व्यापार में पता है 20 लाख का घाटा लग गया। तो सेठानी मुस्कुराने लगी, क्या करने लगी? सेठानी मुस्कुराए, बोले सेठ जी तीसरी बार तो इतनी चिंता, इसमें उदास होने की क्या बात है? एक उपाय बताऊं? किसने कहा? सेठानी ने सेठ जी से उपाय बताऊं? एक तब सेठ जी तुझे क्या पता व्यापार की बात, और क्या उपाय बताएगी? फिर भी बता, बताना तो बता ले। तो सेठानी का एक बात बताऊं, 2 लाख रुपया दान कर दो। सुन रहे क्या कहा सेठानी ने? सेठ जी का वही बुद्धू के बुद्धू, मुझे पहले पता उल्टी सीधी सलाह देगी, 20 लाख का घाटा लग गया और क्या करी सेठानी? बोले सेठ जी बात सही कह रहे हो, मान लो देखो अपने यहां गैया भैंस जब जाते हैं और माने एक आध गाय भैंस अगर चरने गई और एक आध गाय घूम जाए तो अपन क्या करते हैं? उसको ढूंढने के लिए 3-4 बरेली और पहुंचाते हैं, तब उसको ढूंढ के लाते हैं। अगर कहीं घाटा लग गया एक काम करो, कुछ दान कर दो, देखो अपने आप कवर हो जाएगा। अब सेठ जी पहले तो उन्मुन करते रहे, बाद में कहा सेठानी की बात मान तो लो एक बार। और उन्होंने बताते उसी दिन 2 लाख रुपए जिन मंदिर निर्माण के लिए दान की घोषणा। और हुआ ये 3 दिन बाद खबर आई थी कि जो रेट एकदम दान हुए थे वो एकदम वो रेट बढ़ गया, सेठ जी को 10 लाख रुपए का और फायदा हो गया। तब ये इस छोटे से संस्मरण से 2 बातें अपने समझे। आज यदि कोई व्यक्ति यहां पर गरीब है तो गरीब इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, गरीब इसलिए कि उसके पास दान देने की प्रवृत्ति नहीं है। अमीर बनने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप दान करना प्रारंभ कर दो। यदि आप 1 रुपये भी कमाते, जरूरी नहीं कि 1 लाख कमाने वाला ही दान करे, 1 रुपये भी अगर आप कमाते तो उसका 1/4 हिस्सा भी अगर आपने दान कर दिया तो देख लीजिए कुछ ही दिनों में आपकी धन संपत्ति बढ़ती है। दान दे मन हरस दिशे। आज हम लोगों ने दान की प्रवृत्ति जो कम होती जा रही है, प्रवृत्ति हो भी रही है तो दान ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं किंतु आत्म कल्याण के लिए या हमारे पुण्य संचय के लिए अगर करें तो बहुत गुना क्षति गत मेव वट बीजम, ऐसा आचार्यों ने कहा। तो वहां पर वो सेठानी जो सेठ जी को भोजन करा रही थी, बात समझ में आ गई। आप लोगों को हमारा इतना कहना है कि आप अपने बेटा बेटी और पति पत्नी भोजन करे, अब पत्नी किसके सामने भोजन करे ये समस्या आ जाएगी। वो स्वयं तो भोजन करती है, पूरे गृहिणी का ये काम, पूरे परिवार को भोजन कराने के बाद फिर वो स्वयं भोजन करती, ये भी नियम होना चाहिए। पहले अपने डट करके भोजन कर लिया, बाद में आ जाओ तो खड़ा रहेंगे नहीं। फिर इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नियों अगर रात में खाते तुम भी रात में खाओ, ऐसा नहीं। धर्म के मामले में तो सतर्क, पहले आप यदि दिन में भोजन करते हैं तो ये आप करें। तो यहां पर ये चर्चा आपसे कर रहे थे कि ये एक नियम होना चाहिए, और ये नियम अगर आप पालन करेंगे तो हमारा विश्वास है कि आज हमारे बेटा बेटियों से जो माता पिता की दूरियां बढ़ती चली आ रही, आत्मीयता नष्ट होती चली आ रही, और कुछ नहीं आपके आपके प्रति आत्मीयता। देखो यदि आपके किसी के प्रति आत्मीयता अपनापन, वो एक बात कहेगा तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आपको हमारे प्रति आत्मीयता है, गुरु के प्रति विश्वास है तो हम बात कहेंगे तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो जिस पर विश्वास नहीं, आत्मीयता नहीं है, आज परिवारों में आत्मीयता नष्ट हो रही है, उसका कारण यही है कि सामने बैठ करके भोजन करना आपने बंद कर दिया। जब है